The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Bhramar Gita, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, Verses 1 to 3, on the topic of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, sends his intimate friend Uddhav to Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadiya, India on 25th December 1998.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Sukha Vacha. Vrishninam Pravaro Mantri. Krishnasya Daita Sakha. Shishyo Brihaspate Sachchat. Uddhavo Buddhisattamaha. Tama Bhagavan Prishtha. Bhaktame Kantinam Kvachi. Grihitva Panina Pani. Prapannarti Haro Harihi. Gacho Dhava Brajam Samya. Pitro Naupriti Mavaha. Gopina Madhyogadhim. Matsande Sarvi Mochaya.
कृष्ण करणामृत से प्रार्थना है भगवान कृष्ण से. गुणमंगल ठाकुर कहते हैं,
कननीय किशोर मुग्ध मूर्ते है कल्पु बेड़ कणिता दृतानंद हो मम वाचि बिजृंभता मुरार है मधुरिम्रह कणिका पिका पिका पी.
जिनका किशोर स्वरूप अत्यंत अभिलषणीय है तीनों लोकों में सबके द्वारा, और जो अत्यंत ही मुग्ध हैं, विभोर हैं ब्रज लीला में, और जिनके मुख चंद्र में बांसुरी का सम्मान हो रहा है, वेणु का आदर हो रहा है, ऐसे मुरारी के, भगवान कृष्ण के माधुरी की कोई भी एक कणिका मेरे जिह्वा पर प्रकाशित हो. मम वाची विजृंभता, वाची का अर्थ मेरे वचन पर, मेरे वाणी में वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण की कोई भी माधुरी का एक कण भी हमारी जिह्वा पर उदित हो. कणिका का अर्थ होता है एक छोटा सा बिंदु, मधुरिम्रह कणिका, प्री की कणिका चाहिए. कहा ममवाची, मेरे वचन पर, मेरी वाणी में. इस कामना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की माधुरी की कणिका जीवा पर स्फुरित हो, इसके लिए बिलमंगल ठाकुर के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, जिनका कृष्ण करणामृत वास्तव में भगवान के करण के लिए अमृत, जुग जुग तक अजर अमर रहेगा. दूसरी प्रार्थना करते हैं,
मद शिखंड शिखंड विभूषणम
मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजम् ब्रज बधुनयनाञ्जनरञ्जितम् विजयता मम वाङ्मय जीवितम्। जिनके सिर पर शिखंडी का शिखंड है, तो जो मयूर के पंख के सिरोभूषण से विभूषित है और जिनका श्री विग्रह विशेष करके मुख है अत्यंत ही प्रेम में विभोर है, खिला हुआ है जिनका मुख कमल, और जो ब्रजवधुओं के नयन अंजन से रंजित हैं, ऐसे प्रभु ही मेरे वाणी के जीवन है। श्री कृष्ण ही मेरे वाङ्मय जीवित, हमारे वाणी के जीवन वही। आचार्यों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भ्रमर बनकर गोपियों के और विशेषकर श्री राधा जी के, प्रिया जी के उद्गारों को सुनने के लिए ब्रज में प्रकट हुए, वही भौरा बने हैं। कुछ महाभाव का ऐसा मत, और कुछ का कहना है कि वास्तव में कोई भंवरा था जो राधा रानी के चरण के सुगंध से लुब्ध होकर के चरणों का स्पर्श कर रहा, तो उसको दूत के रूप में कल्पना करके राधा रानी कृष्ण के प्रति अपने भाव को व्यक्त करती हैं, तो इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। अथवा उद्धव जी को ही भ्रमर के बहाने राधा रानी कृष्ण के बारे में कुछ कह रहे हैं, उद्धव को ही भ्रमर के रूप में, उद्धव जी सामने है इसलिए उनको कुछ कहना ठीक नहीं है, वो प्रियतम के सखा है, महान है, तो उद्धव जी को सुनाने के लिए ही भ्रमर का बहाना करके कुछ कहा जा रहा है, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। और वैसे प्रसिद्ध है उद्धव संदेश, अधिकतर यही प्रसिद्ध है उद्धव संदेश। उद्धव संदेश का अर्थ है उद्धव के द्वारा कृष्ण का संदेश जो ब्रज में पहुंचाया गया, लेकिन उद्धव संदेश यह भी होता है कि गोपियों ने जो उद्धव जी को कहा कृष्ण से कहने के लिए, वह भी उद्धव संदेश। बीच में उद्धव जी को माध्यम बनाकर जो भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम प्रकट किया है ब्रजवासियों के प्रति और विशेष करके श्री गोपीजनों के प्रति, वह गोपीजनों ने अपने प्रेम भाव को कृष्ण के प्रति जो प्रकट किया, वह भी उद्धव संदेश। तो उद्धव जी को ही भगवान कृष्ण क्यों अपना दूत बनाए, इसको कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, गोपीनाम सांत्वनम अपि सन्मंत्री साध्यम इति तदर्थम उद्धवम विशिनास्ति वृष्णिनाम इति। गोपियों को सांत्वना देना एक रहस्यमय कार्य था, और भगवान कृष्ण के किसी सन्मंत्री बहुत ही सुशिक्षित और कृष्ण जैसा महान यदि कोई मंत्री हो तो वही गोपीजनों को सांत्वना दे सकता है। तो भगवान ने बहुत विचार करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा, तो इसलिए उद्धव जी में क्या गुण है यह बताना आवश्यक है, क्यों भगवान कृष्ण उद्धव को ही ब्रज में भेजे, तो उद्धव के कुछ गुणों को गिना रहे हैं। वृष्णि नाम प्रवर, पहली विशेषता है वृष्णियों में श्रेष्ठ प्रवर। भागवत में कहा है कि वृष्णि वंशियों में मैं उद्धव हूं, बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान के प्रतिनिधि और मंत्री, उनके मंत्री थे, तो वृष्णि वंशियों का मंत्री होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत बड़े संकट से विष्णु वंशियों को जादुओं को उबार लाए थे उद्धव जी बुद्धि दे करके। जरासंध जैसे बड़े से बड़े राजनेताओं के भी मत को परास्त कर दिए। तो मंत्री, तो मंत्री का अर्थ होता है जो मंत्र दे, और मंत्र का अर्थ होता है परामर्श। किसी विकट परिस्थिति में भी ऐसा मंत्र दे दे कोई जिससे कि कोई मंत्र लेने वाला व्यक्ति संकट से पार हो जाए, तो उसको मंत्र सिद्ध, मंत्र सिद्ध मंत्र व्यक्ति कहते हैं। किसी भी भीषण से भीषण परिस्थिति में उद्धव जी तत्काल समाधान कर देते थे किसी बात, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसे मंत्री कहते हैं। जो देश और काल के अनुसार सुंदर युक्ति बतावे, हम अपने समाज को कृच्छ्र से कठिनाइयों से उबार ले, उसको मंत्री कहते हैं। बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे। बृहस्पति जी ने देखा कि यह लड़का अति तीक्ष्ण बुद्धि का है, तो स्वयं ही उनको पढ़ाने लगे गए। और जो भी पढ़ने जाते थे स्वर्ग में, तो बृहस्पति जी अपने शिष्यों के द्वारा पढ़ाया करते थे, और लोग शिष्यों को लगा देते थे उसको पढ़ा दो, उसको पढ़ा दो, उसको पढ़ा। लेकिन उद्धव जी को स्वयं पढ़ाए थे, इसीलिए बृहस्पति साक्षात शिष्य कहा गया, साक्षात शिष्य, न तो शिष्यादि द्वारा अध्यापन, शिष्यादि द्वारा नहीं पढ़ाया, साक्षात पढ़ाया। तो नीति शास्त्र में विशारद थे, न्याय शास्त्र में, लेकिन एक ही शास्त्र उद्धव जी नहीं पढ़े थे, जो कि उनके गुरु जी भी नहीं पढ़े थे बृहस्पति जी, वो था कृष्ण प्रेम शास्त्र। इसको कौन पढ़ावे उद्धव जी को? भगवान ने सोचा कि यह मेरा प्रिय मित्र, समस्त सद्गुणों में मेरे समान, लेकिन एक प्रेम शास्त्र को ये नहीं पढ़ा है, तो इसे गोपिकाएं पढ़ाएंगी। उन्होंने ये सोच, तो उद्धव को इसीलिए ब्रज भेज ये पढ़ने के लिए कि विश्व का इतना महाविद्वान यदि गोपी प्रेम की सराहना करेगा, तो संसार के बहुत से लोग गोपियों के इस गूढ़ प्रेम को समझकर मुझसे प्रेम करना सीख जाएंगे। मुख्य बात यह थी कि भगवान ने कहा था दूत से कि आयास से मैं आऊंगा, इसे दो बार उन्होंने कहा था दृष्टु वैश्या। जब भगवान ब्रज से विदा हो रहे थे, रथ पर चढ़ गए थे और गोपियां प्रत्यागमन का संदेश चाहती थी, तो भगवान ने एक दूत भेजा और कहा कि कह दो कि आयास से मैं आऊंगा, ये तो कहकर मथुरा चले गए। और जब मथुरा में उनके साथ साथ उनके सखा गए, नंद महाराज आदि गए, लेकिन इन लोगों को जब ब्रज में विदा करने लगे, वे नहीं लौटे, श्री कृष्ण इनको विदा करने लगे, लोग नहीं आ रहे थे, तो भगवान ने कहा था कि दृष्टु में श्याम, मैं अपने बंधुओं को देखने आऊंगा। तो ब्रजवासी कृष्ण की आज्ञा मानकर ब्रज में लौट गए थे, और भगवान को हमेशा ये बात याद रहती थी कि मैंने आज जाने के लिए कहा है, यह कहा है, वह कहा है, और यह भी जानते थे कि मेरे विरह में ये ब्रजवासी जी नहीं पाएंगे, तो सोचते थे आज चलूंगा, कल चलूंगा, यह कार्य कर लूं, वह कार्य कर लूं, लेकिन भगवान जा नहीं पा रहे, कोई न कोई काम लगा रहता था। सबसे व्यस्तता तब हो गई जब उन्होंने कंस का वध कर दिया। कंस एक राजा था और जरासंध का दामाद, तो इस कारण से जादवों पर विशेष संकट आ गया, तो उनकी साल संहार करने के लिए भगवान रुक गए। और इसके बीच में वे पढ़ने भी गए उज्जैन अवंतिका, चाहते हुए भी अपने सुहृदों का, अपने माता पिता का या गोपीजनों का दर्शन चाहते हुए भी वे ब्रज में नहीं जा पाए। किसी भी प्रकार से भगवान को फुर्सत नहीं मिली। ये विकल हो गए और किसी तरह से ब्रजवासियों को सांत्वना देना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे फुर्सत नहीं है, अवसर नहीं है, तो उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में। एक और भी बहुत से गुण यहाँ बताए गए हैं, तो उसमें लास्ट ईयर में इस प्रसंग को विस्तार से कहा था। जिसको विस्तार से कहा था उसको संक्षेप में कहूंगा, जिसको संक्षेप में कहा था उसका विस्तार करूंगा। इन दोनों श्लोकों की मैं बहुत व्याख्या किया था पर सर, इसलिए यहाँ नहीं ले रहा हूँ। इतना ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव जी के जो गुण बताए गए हैं वे उनके वक्तव्य में जब गोपीजनों से बात करेंगे आनंद महाराज यशोदा जी से, तो उस समय उनके भिन्न भिन्न गुण प्रकाशित होंगे। बुद्धि सप्तम, तो बुद्धि सप्तम गुण कब प्रकाशित हुआ, बृहस्पति जी का शिष्यत्व तो कब प्रकाशित हो रहा है, या कृष्ण के दैत सखा थे इस बात का कब रहस्य उद्घाटन हो रहा है, कई सब बातें प्रकाशित हुई है। और उस बार मैं गिनाया भी था कि इस प्रसंग में यहाँ पर यह गुण प्रकट हो रहा है, यह गुण प्रकट हो रहा है। तो सब प्रकार से सब तरह से योग्य उद्धव जी थे। और उद्धव का एक श्लेष अर्थ होता है उत्सव। भगवान के विरह में दुखी ब्रज में भगवान उत्सव भेज रहे हैं, शोक से दग्ध लोगों के बीच मूर्तिमान उत्सव भेज रहे हैं सुखी करने के लिए। तो गृहीत्वा पाणी ना पाणी, भगवान ने अपने पाणी से उद्धव जी का पाणी पकड़ा और उनसे इस तरह कहने लगे,
हे सौम्य ब्रजम गच्छ, हे उद्धव हे सौम्य ब्रजम गच्छ। क्या आवश्यकता है ब्रज में जाने की? तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, नह पित्र हो, हमारे माता पिता को प्रीतिम आवह, उन्हें प्रीति दो, प्रसन्नता दो, उनको सुख दो। का अर्थ सम्यक वह, और गोपियां जो मेरे विरह की पीड़ा से दग्ध हैं, उनका दुख मत संदेश विमोचो, मेरे संदेश से दूर करो, मेरे माता पिता को प्रीति दो और मेरे संदेश से गोपियों का दुख दूर करो जो मेरे वियोग से उत्पन्न हुआ है। करके मूल बात, तो उद्धव ब्रजम गच्छ, इस पर हरिश्वरी जी लिखते हैं कि भगवान है सौम्य संबोधन क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। आधिम तदीयम बपने तुमसी न कोपि सक्तः तदहम कथम श्याम। जहां तक श्री गोपी जनों के विरह पीड़ा को दूर करने की बात, जिसके विरह में वे दग्ध हैं, आप नहीं जाएंगे तो कैसे सुखी रह सकती, उनकी विरह पीड़ा कैसे दूर होगी, कोई भी समर्थ नहीं है, तो मैं कहाँ से समर्थ हो सकता हूँ, केवल आप समर्थ हैं। तो नैसा चिंता से हृदय सौम्य संबोध संदेश मदात स्वमीश, भगवान ने कहा कि इसकी चिंता मत करो उद्धव, क्योंकि तुम सौम्य हो। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, सोम से अमृत की किरणें निकलती हैं, कठिन से कठिन दाह का समन कर देता है चंद्रमा, तुम सौम्य हो। चंद्रमा सोम का जो है ऐसा, सोम जैसा जिसमें गुण है उसको सौम्य कहते हैं। तो तुम्हारी वचन रूपी किरणें जब निकलेंगी तो निश्चित मुझे विश्वास है कि गोपी जनों का विरह जलन दूर हो जाएगा। सौम्य संबोधित करके कह रहे हैं, दिन में कितनी गर्मी पड़ती है शरद ऋतु में खास करके, और रात्रि में जब सोम का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, तो शीतलता छा जाती है। तुम जाओगे ब्रज में तो जो हमारे विरह से लोग जल रहे हैं, विशेष करके गोपियां, निश्चित वो शांति मिलेगी,
देख रहे हो मित्र, मैं यहाँ से जा नहीं सकता किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति में मेरी यहाँ आवश्यकता है, तुम जाओ और उन्हें सुखी करो। सुखम आ सम्यक वह, प्रीतिम का अर्थ सुख है और आ का अर्थ सम्यक और वह का अर्थ है स्वचातुर्जीर्ण बलादिव प्रापय। यद्यपि मेरे विरह में इतना दग्ध है कि तुम्हारे द्वारा सुखी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बलात उनको सुखी करो। स्वचातुर्जीर्ण, अपनी चतुराई से, अपनी कला से, किस ढंग से जाकर के बताओ कि उनको विश्वास हो कि मैं अब आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, वो सुखी हूँ। मोहम्मद बिना तयो प्रीते है दुःसाध्यत्वा, क्योंकि मेरे बिना उनकी प्रसन्नता दुःसाध्य। जदवा प्रवाह न्याय न कुरु यथा तत्पश्चात अपि तयो प्रीति तिष्ठेत इत्यर्थ। आवह का अर्थ है बहा दो, धारा की तरह उनको प्रसन्न करो, जिसे तुम्हारे मथुरा लौट आने के बाद भी तयो प्रीति ही तिष्ठेत है, उनकी प्रसन्नता रहे, उनका सुख रहे। और गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेश विमोचे, मद वियोगेन यह आधी ही मनोदुखम तम विशेषण मोचया। वियोगाधि मन में जो पीड़ा है, दुख है गोपीजनों के, तो शरीर में भी सब जगह पीड़ा है, तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण जो पीड़ा है उसको कह रहे हैं विशेषण मोचय, विमोचय, दृढ़ बंधनवत हृदय संलग्न। हृदय में ऐसा दुख सट गया है, ऐसा जकड़ गया है कि तुमको उसको खोलना होगा, हटाना होगा, और मेरे संदेशों से ही वो जा सकता है। स्पष्टतया त्याज एवं आधी विमोचन मात्र में न तो प्रीति कर तुम सक्षसी अर्थ, तो वहां का प्रसन्न करो मेरे माता पिता को। और इस श्लोक, इस आधे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि गोपियों की विरह व्यथा का विमोचन करो। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोपियों को तुम सुख नहीं दे पाओगे, केवल थोड़ी थोड़ी सी विरह व्यथा भर दूर कर सकते हैं। लेकिन इनको भी कहते हैं कि गोपियों को सुख दो, प्रसन्न करो, ऐसा नहीं कह रहे, उनकी विरह व्यथा विमोचे, इसी तरह से उनकी विरह व्यथा को दूर कर दो। सुख तो बिना मेरे संयोग के उन्हें नहीं हो सकते। तच्च मत संदेश से ही बहुवी रे, और वो अभी उनका दुख मोचन होगा मेरे संदेशों के द्वारा, वही बहुवचन, एक संदेश नहीं, बहुत संदेश, संदेश ही न तो संदेश है ना, बहुत संदेशों से होगा, बहुत प्रकार से जो मैं बात तुमको बता रहा हूँ वो सब कहना। नचक तदवाक चातुर जादिना, गोपियों का विरह ज्वलन, उनकी विरह वेदना तुम्हारे वाक चातुर से नहीं जाएगी, मेरे संदेश से जाएगी, और बहुत संदेश से। उद्धव जी को ये समझा रहे हैं कि तुम अपनी ओर से कोई बात हो मत बकना, मैं जो कह रहा हूँ वही कहना है। ये अभी से संकेत कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान भेज रहे हैं तो जानते हैं कि उद्धव मेरी विभूति है और वो तो मेरा स्वरूप है। एक मैं अपनी विभूति को अपने स्वरूप के पास भेज रहा हूँ, जिससे मदात्मिका भगवान बोल रहे, पर हरिश्री जी कहते हैं अपनी विभूति को भेज रहे हैं अपने स्वरूप के पास, तो ये सिखाएगा कि वो सिखाएंगे। भगवान मदात्मिका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उद्धव को समझ लेना चाहिए कि किसके पास भेजा जाए। भगवान कह रहे हैं गोपियों में हमें भेद नहीं है, मेरा स्वरूप है साक्षात, तो इसलिए मत संदेश ही, मत संदेश ही, संदेश ही शब्द से भी काम चल सकता था कि संदेशों के द्वारा उनका दूर करो, लेकिन मत संदेश ही, मेरे ही संदेशों के द्वारा उनका दुख दूर किया जा सकता है। मैं जो कह रहा हूँ अक्षर अक्षर वही सुनाना। विमोचन का अर्थ होता है खोलना, खोलना, हृदय को चारों तरफ से वो दुख फंसा कर जकड़ लिया है, निकल नहीं रहा है हृदय से वो दुख। नह पुत्र प्रीति माव, मेरे माता पिता को सुख दो। तो इसमें नह शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया है? नह का अर्थ होता है बहुवचन में, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता का दुख दूर करो। ये नौ भी पाठ भेद है, नर और भगवान जिसका अर्थ, लेकिन वास्तव में नह पाठ है, क्योंकि ब्रजवासी सब जानते हैं कि श्री बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र है, इसलिए भगवान ऐसा कह ही नहीं सकते कि नौ पित्र। हमारे माता पिता ब्रज में रहते हैं, बलराम जी के माता पिता मथुरा में रहते हैं, ये सब भगवान जानते हैं इस बात को, और सब जगह विख्यात बात। तो नह पित्र कह रहे हमारे माता पिता, बहुवचन इसलिए कह रहे नह कि हमारे पिताजी, हमारी माँ हमारे माननीय हैं, तो उद्धव तुम्हारे भी माता पिता ही है, तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं हमारे भाई सबके माता पिता, बहुवचन के प्रयोग इसलिए कर। सनातन गोस्वामी कहते हैं न इति बहुत्वम तत् पितृत्वेन आत्मनो बहुमानत। एक अर्थ है कि नंद जसोदा जैसे पिता और माता कृष्ण को प्राप्त हैं, तो कृष्ण बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अपनी अपने गौरव को व्यक्त करने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा आप किंवा मत पितृत्व न भवादृशाम तौ पितर इति अभिप्राय, वो हमारे माता पिता है तो तुम्हारे जैसे भी जो लोग हैं सबके माता पिता हैं, अतः तयो हो तस्य स्नेहम वर्धयति, अपने माता पिता में उद्धव जी का स्नेह बढ़ा रहे हैं। हमारे माता पिता है तो तुम्हारे भी माता पिता है, और माँ जो हमको जन्म दी है, पिताजी जो पालन किया, हमारे विरह में वो लोग बहुत दुखी हैं, तो जाकर के संदेश दो उनको, समझाओ, ये भगवान कह रहे स्नेहम वर्धयति नवविच्छेद दुखितये, इतनी मेरी सेवा की और आज मेरे विरह में रो रहे हैं, दुखी हैं, तो तुम जाकर के उनका दुख दूर करो, उनको प्रसन्न करो। इस पर सूरदास जी ने लिखा है कुछ पद जो भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी के द्वारा संवाद। सबसे पहले पिता नंद जी को संदेश दे रहे हैं, कहियो नंद कठोर भये, कहीं आप जाकर कहिए हमारे पिताजी नंद महाराज कठोर हो गए, इस समय उलाहना दे रहे हैं संदेश के रूप में, वही कठोर हो गए, हम कठोर नहीं हैं, एक संदेश दे रहे हैं, कहियो नंद कठोर भये, हम दो बीरे दार परे घरे मनु थाती सौंप गए, हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में डाल करके चले गए, पर घर में डाल कर चले गए, पर घर मतलब वसुदेव जी के घर में फेंक करके चले गए, वही पहुंचाने आए थे नंद बाबा, ब्रज से पहुंचाने के लिए आए थे, रथ पर कृष्ण बलराम आए थे अक्रूर जी के साथ, और नंद बाबा बैलगाड़ी पर चढ़ करके आए थे, और सब गोप ग्वाल भी, इसी को कह रहे हैं कि ला करके दूसरे के घर में रख दिए और हमारी फिर सुधी नहीं ली, इतना कठोर हो गए हमारे पिताजी, कहियो नंद कठोर भय, हम दो वीर दार पर घर, वीर का अर्थ होता है भाई, दोनों भाइयों को दूसरे के घर में रख करके चले गए, जैसे कोई किसी की थाती रखा हो और लौटा दे, लगता है उस तरह से रखे थे, फिर लौटा दिए और सुधी नहीं ली, तनक तनक तय ताली बड़े किए बहुत सुख दिख राये, छोटा छोटा से पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और बड़ा हो गए तो हमको मथुरा पहुंचा दिए और हमारी सुधी नहीं ली, तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुत सुख दिख राए, गोचारण को चलत हमारे पाछे को शक धाये। जब हम दोनों भाई गोचारण के लिए चलते थे तो पिताजी हमारे पीछे पीछे कोसों दूर आते थे पहुंचाने के लिए। उस समय कितना मृदु थे, जैसे भगवान वो सब लीलाएं याद कर रहे हैं। नंद बाबा कृष्ण को छोड़ने जाते थे गोचारण के लिए और कोसों दूर चले जाते थे। गोचारण को चलत हमारे पाछे को शक धाये। कितना स्नेह है नंद बाबा का कृष्ण के पीछे पीछे कोसों दूर जाना छोड़ने के लिए, और जब अगवानी करनी होती थी तो फिर कोसों दूर जाते थे, प्रतीक्षा करते थे कृष्ण आ रहा है आ रहा है। तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुत सुख दिखराए। छोटे छोटे से कैसे कैसे पाल पोस करके बड़े किए और बहुत सुख दिए। गोचारण के लिए जब हम दोनों भाई चलते थे तो कोसों दूर पीछे पीछे आते थे। ये वसुदेव देव की हम सो कहता अपने जाए। इधर आ करके हम ऐसे फंस गए कि देव की वसुदेव कहते हैं कि तुम हमारे बेटा हो, अब हम क्या करें। तुम तो देख ही रहे हो उद्धव, ये लोग कितना जबरदस्ती कर रहे, कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। ये दोनों कहते हैं कि हम जन्म दिए हैं तुम। ये वसुदेव देव की हम सो कहता अपने जाए। ये कहते हैं कि तू हमारे बेटा है, ये जाने ही नहीं देते हैं ब्रज में हमको। बाबा आते और वो कहते कि नहीं कृष्ण हमारा बेटा है, तब एक जाने का रास्ता भी निकलता। अब हम क्या करें, हम अपने घर जाना चाहते हैं तो ये लोग कहते नहीं तुम इस घर के हो, घर में रहो। ये वसुदेव देव की हम सो कहता अपने जाए। बहुर विधाता जसुमत जो के हम इन गोद खिलाए। फिर ब्रह्मा विधाता माँ यशोदा के गोद में हमको खेलने का सुख नहीं दिया, जाकर के कहना तुम। मतलब भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि माँ यशोदा हमको मथुरा से ले जाने का कोई उपाय करे, नंद बाबा यहाँ आवे और ले जाने का उपाय करे। और उधर भगवान ने संदेश भी दिया था कि आप लोग आइएगा मत, मैं खुद ही आऊंगा। इसीलिए नंद बाबा नहीं जा पाए। उन्होंने कहा था मैं आगमिष्यामि, मैं आऊंगा। माँ यशोदा के गोद में जो खेलने का सुख प्राप्त हुआ वो विधाता हमको पुनः नहीं दिया। बहुरी विधाता जसमत जी के हम ही न गोद खिलाए। कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए। सूरदास ब्रज समाधान करुआ जो काल हम आए। किस काम का यह राज्य है, यहाँ बहुत प्रकार का सुख है लेकिन ये सुख ब्रज सुख के आगे किसी प्रकार के नहीं है। हे मित्र जा करके समाधान करो, समझा दो हमारे माता पिता को, बस आज काल हम आए, आज काल में आ गए। एक में मुहावरा है, एक में बहुत जल्दी आ गए। बस यही बाबा समझे, यही माँ समझे कि उनका बेटा आज कल में अब आने वाला है, लौटने वाला है, वो चिंता न करें। और माता जो सोदा से संवाद दे रहे, माँ जो सोदा को ये कहना, यही सोदा जी का पद है।
नीके रहियो जसुमत मैया, आवेंगे दिन चार पांच में हम हल धर दो भैया।
कि माँ तुम ठीक से रहना।
नीके रहियो जसुमत मैया, कि माँ तुम ठीक से रहना, मेरी चिंता मत करना, ठीक से
खाना पीना सुख से रहना, बस तीन चार पांच में, चार पांच दिन में हम और हलधर दोनों भैया आएंगे, आएंगे दिन चार पांच में हम हलधर दो भैया, जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे काहू न कहो कन्हैया। माँ, जब से मैं तुमसे बिछड़ा इस मथुरा में मुझको कोई कन्हैया कभी नहीं कहा, ना जशोदा कृष्ण नाम को इस तरह से कहती थी, कृष्ण नाम यह सुनो गर्ग पे कान कान कहीं बोले। ब्रज में कन्हैया नाम भगवान को बहुत प्रिय है, जिस दिन से मैं आया ब्रज से तुमसे बिछड़ा तो मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे काहुन कहो कन्हैया, कबहू प्रातन कियो कलेवा साँझन पीनो छैया। और जब से मैं मथुरा आया माँ, प्रातः काल में कलेवा कभी नहीं की कर सका, तुम तो गोद में से जो ही मैं उठता था तुम्हारे गोद से तो ही तुम खाने को देती थी, माखन देती थी, रोटी देती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सवेरे में कहीं भोजन ही नहीं की, किसी ने पूछा ही नहीं कि सवेरे इसको भूख लगती होगी। कबहू प्रातन कियो कलेवा साँझन पीनो छैया, और सांझ के समय में वो छैया नहीं पिया, छैया का अर्थ धारोष्ण दूध। नंद बाबा कल कभी दुहते थे और मुंह कृष्ण के मुंह में धारोष्ण दूध गाय उसको छैया कहते, छाक लगा करके पीना। प्राय गोपों के यहाँ बहुत गिलास बर्तन नहीं होता है तो गरम गरम दूध है अंजलि में लेकर के पीते हैं, वो छाक लेना आज भी कहते हैं भोजपुरी में। तो कभी हमको वो गाय का धारोष्ण दूध नहीं मिला, कभी सवेरे भोजन नहीं मिला। और फिर कहते हैं कि माँ मेरा जो सामान है वो संभाल कर रखना, कई सामान है मैं आऊंगा तुरंत। बंसी देनू संभारी राखियो और अबेर सबेरो, जब तू घर से बाहर जाती हो काम करने के लिए अबेर सबेर तो उस समय सामान के चोरी का डर रहता है, इसलिए संभाल करके रखना। विशेष करके क्या है, बंसी देनू, बंसी देनू संहारी राखियो और सब अबेर सबेरो, मत ले जाय चुराय राधिका कछुक खिलौना मेरो। राधिका से सावधान रहना, वो हमारी बंसी हमेशा चुरा करके जाती थी, वो हमारा न चुरा ले। और हमारा बहुत सा खिलौना जो मैं रखा हूँ वो भी संभाल करके रखना। मत ले जाय चुराय राधिका कछुक खिलौना मेरो, कहियो जाय नंद बाबा सो निपट निठुर जिय किन्हु। नंद बाबा से कहना कि इतना कठोर चित हो गए, कहियो जाय नंद बाबा सो निपट निठुर जिय किन्हु, सूर श्याम पहुँचाय मधुपुर पुनि संदेश लीन्हु। भगवान किस तरह से ब्रज की याद कर रहे हैं, विशेष करके शुरू में नंद बाबा माँ जशोदा की, गोपों की, गोपिकाओं की। ये रत्नाकर जी के द्वारा हम लोग लिखे गए कविता का स्वामी करेंगे।
नंद यौज सुमती के प्रेम पदे पालन की लार भरे लालन की चल गावती, कह रत न कर सुधा कर प्रभा सुमी जमुना कछारनी की रंग रसरारनी की बीतना बिहारनी की हंस हो मसावती, सुधि ब्रज वशी न दीवैया सुख राशि न की बोली कहम को बुलावन को आवती।
नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन किए, मेरा किस तरह पालन किए हैं, वो पालन प्रेम से पगा हुआ है। जैसे हम लोग रसगुल्ला देखते हैं वो शीरा में पगा होता है, वैसे जो उन्होंने पालन किया प्रेम से पगा हुआ पालन था। मुझे सपने में भी भगवान नहीं समझे, हमने एक छोटा सा अबोध बच्चा समझ करके प्रेम से पालन किया और लाड़ भरे लालन और लालन की गोद में खिलाए, इन्हीं तरह का प्यार किए। आज उनकी जो सुधि आ रही है मुझे, वो सुधि उसकी लालच लगा रही है, तो मेरे अंदर बहुत लोभ हो रहा है कि अभी मैं चल दूं ब्रज में, अभी चल दूं, जब जब याद आ रही है। नंद आज
सुमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती।
और दूसरे पंक्ति कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मरी मंजू मृग नैनी के नैनी के गुणगन गावती। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि सुधाकर की प्रभा से जो मढ़ी हुई है गोपियां इतनी सुंदर हैं कि लगता है कि चंद्रमा के किरणों से उनका श्रृंगार किया गया है। तो उनके मंजू मृग नयनी के गुण गन गावती, आज जब मुझे उनकी सुधि आ रही है तो उनके गुण की याद आ रही है, उनकी सुधि हमसे गवाने लगती है। कह रही है जिनकी आंखें मृग हरिण के समान है और बहुत सुंदर है, उनकी जनों की याद आ रही है।
कह रत न कर सुधा कर प्रभा समी मंजू मृग नैनी के गुण गान गावती। जमुना कछरनी के रंग रस रारनी
और जमुना कछारनी की, जमुना के तट की मुझे याद आ रही है, जमुना के किनारे जो वन है और उन वनों में जमुना के तट पर मैंने जो रंग रस रारनी की, जो मैंने रास विहार किया और गोपी जनों के साथ जो रार किया पनघर पर पानी भरने में और फूल चुनने में, जो मैं उनके साथ रारनी उनके साथ जो झगड़ा करता था रंग रस रारण की बिपिन बिहारण की हंस हंसावती, और अपने सखाओं के साथ जो मैं वन में अनेक विहार किया गोपीजनों के साथ, आज उसकी हंस मतलब उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय में उठ रही है। मैं चाहता हूँ कि वहीं जाकर के वही करूँ, वही लीला करूँ।
सुधि ब्रज बसीना दीवैया सुख रासीना की उधोली हमको बुलावना को आवती।
ब्रजवासी न दीवैया सुख रासीना की, हमारे ब्रजवासी हमको सुख की राशि देने वाले, बहुत ज्यादा सुख दिए हैं, सुख राशि न दीवैया वो सुख देने वाले हैं, सुख की राशि राशि हमको वो दिए हैं, उनके साथ रहकर मैं बहुत सुख भोगा हूँ, विधाता हमारा वह दिन दूर कर दिया। उद्धव ब्रजवासियों की गोपियों की नंद यशोदा के पालन की पोषण की सबकी सुधि मुझे नित आ रही है, और सुधि ऐसी आती है कि हमको बुलाने के लिए आ रही है, हमको ब्रज के प्रति निमंत्रण दे रही है।
गोकुल की गल गल गली में हाँ की गोरस के काज लाज बस के बहाई हो कहत आकरी भाई वो नरेली में को गाई वो गवाई वो नाची वो नचाई वो
सके काज लाज बस कह बहाई उद्धव मैं ब्रज की लीला क्या बात बताऊं। गोकुल की गली गली में और झुंड की झुंड गोपियों के गोरस के लिए मैं लाज को किस तरह बहा देता था। मैं उस गोरस के लिए दूध के लिए तरसता था। गोरस के श्लेष अर्थ भी है, समझदार लोग समझेंगे। गोकुल की गैल 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 ग्वाली में की गोरस के काज लाज बस कर बहाई, लाज को अपने बस में करके बहा देता था। मतलब मुझे कोई लज्जा नहीं थी, दूध मांग मांग करके पीता था खाता था। तो लीला मुझे याद आ रही, कहे रत्नाकर रिझाई वो नवेली न को, और उन ब्रज ज्योतियों को मैं किस तरह रिझाता था। गाई वो गवाई वो और नाची वो नचाई वो, गाता था गवाता था नाचता था नचाता था की वो श्रमहार, और कहीं मैं श्री राधा रानी को पंखा झलता था, उनका चरण दबाता था, मतलब श्रमहार करता था, उनके परिश्रम को मैं दूर करता था किसी भी गोपी के। की वो श्रमहार मनुहार कह विविध विधि, और उस तरह से मनुहार मनाता था माननी बनने पर। गैल 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 ग्वाली में की गोरस के काज लाज बस कर बहाई, लाज को अपने बस में करके बहा देता था। मतलब मुझे कोई लज्जा नहीं थी, दूध मांग मांग करके पीता था खाता था। तो लीला मुझे याद आ रही, कहे रत्नाकर रिझाई वो नवेली न को, और उन ब्रज ज्योतियों को मैं किस तरह रिझाता था। गाई वो गवाई वो और नाची वो नचाई वो, गाता था गवाता था नाचता था नचाता था की वो श्रमहार, और कहीं मैं श्री राधा रानी को पंखा झलता था, उनका चरण दबाता था, मतलब श्रमहार करता था, उनके परिश्रम को मैं दूर करता था किसी भी गोपी के। की वो श्रमहार मनुहार कह विविध विधि, और उस तरह से मनुहार मनाता था माननी बनने पर। मैं वो मनुहार लीला, मतलब मनाने की लीला और परिश्रम दूर करने की लीला, और फिर मोहिनी मृदुल मंजु बांसुरी बजाई वो, और वो मधुर मोहिनी बांसुरी का बजाना, उधर जब जब ब्रजमंडल के इस सुख संपत्ति का स्मरण आ रहा है तो भूलने पर भी नहीं भूल रहा है, भुलाना मुझको भूल गया। कैसे भुलाया जाएगा ये भी मुझे भूल, मैं भूल गया। गोकुल की गल 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 ग्वाली न की गोरस के काज लाज बस कह बहाई हो, ब्रजमंडल का वैभव और सुख है। भगवान ऐसे मथुरा में वे राजा के रूप में है, नाम मात्र के लिए उग्रसेन जी राजा है, लेकिन वास्तव में वही राजा है।
पर ब्रज के सुख का स्मरण हो रहा है तो पश्चाताप कर रहे, रो रहे। नंद और यशोदा जी के प्यार का स्मरण हो रहा है, बता रहे हैं। और जमुना के तीर पर क्या क्या लीलाएं होती थी गोपियों के साथ और गोपों के गुप्त सखाओं के साथ, उसकी याद कर रहे हैं।
नंद आज सुमती के प्रेम पे पालन की लाल भाई लाल की लाल चल गावती कह
कह रहे हैं कि मैं ये सब मुकुट लगाकर क्या करूंगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रत्नाकर जी कहें
पुरे के पखवन को मुकुट छवि लो छोरी कृत मणि मंडित धराई करी है कहा व्यंजन छवाई कर बालन को झोंकी बीरहन लल हरि सुर बृंद की कलाई करी है कहा प्यार नाम गोरी ठाकुर
मोर के पखवन को मुकुट छबीलो छोरी, मोर के पंखों का छबीला मुकुट छोड़कर मणि मंडित किरीट धारण कर क्या करूंगा, क्या इसमें से किरीट मतलब किरीट मुकुट मणि मंडित हीरा से जड़ा हुआ मुकुट पहनकर क्या करूंगा। मोर के पखवन को मुकुट छबीलो छोरी, उद्धव से भगवान दिखा कर कह रहे हैं ये मणियों से बना हुआ मुकुट धारण करके क्या करूंगा। मैंने अपने पलंग पर भगवान इस मुकुट को फेंक करके कह रहे हैं इसको धारण कर क्या करूंगा, किस काम का है। मोर पंख का मुकुट ही सबसे अच्छा है, छबीलो मतलब छवि जिसमें है फब रहा है, बहुत सुंदर लगता है मोर का मुकुट, उसको छोड़ करके मणिमंडित किरीट धारण कर क्या करूंगा। कहे रत्नाकर ते माखन स्नेही बिन, और स्नेही माखन सरस माखन को छोड़ करके ये छह प्रकार के साग सब्जी चबा कर क्या करेंगे, इसको चबाना कह रहे हैं। वास्तव में कभी कभी साग चबाना पड़ता है नहीं? सतरस व्यंजन चबाई करी है कहा, इसको हम क्या चबाएं। गोपी ग्वाल बालों में को झोंक बिरहानल में, गोपी ग्वाल बालों को बिरह के आग में दवानल में झोंक करके फिर देवताओं की बला देवताओं का दुख हर कर क्या करूंगा, क्या लाभ होगा। और अपना प्यारा नाम गोविंद और गोपाल छोड़ करके तीनों लोगों का ठाकुर कहा कर क्या करूंगा, द्वारकाधीश कहलाने से हमको क्या लाभ है, क्या सुख है।
मोर के पखवन को मुकुट छबिलो छोरी कृत मणि मंडित धराई करी है कहा कह रत्न सतरा सौ व्यंजन सबाई करी है का गोपी ग्वाल वाले को झोंकी बीरहन लन हरि सुर बिंद की बलाई करी है का चारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाई ठाकुर
भगवान तीनों लोक के ठाकुर हैं। ठाकुर का अर्थ होता है रक्षक स्वामी। तीनों लोगों का ईश्वर कहा कर क्या करूंगा, हमको तो गोविंद और गोपाल नाम प्रिय है, गाय का रखवाला गाय का पालन करने वाले। इन नामों को छोड़ करके द्वारकाधीश कहलाना या त्रिलोकनाथ कहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं छोटे से, और भगवान बड़े से छोटा बनने में सुख मानते हैं। गाय चराना, जमुना के तट पर खेलना, जूठा खाना, बच्चों का छीना झपटी खेल कूद, इसमें भगवान की रुचि है।
उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही।
भगवान कह रहे हैं कि उधो मुझे ब्रज नहीं विसर रहा है,
सर्वदा स्मृति बनी रहती है।
उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, उधो नहीं ब्रज विशरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, उधो नहीं ब्रज विशरत नाही, ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही, वसुर भीले बच्छ खरक दुहावन जाई, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही नवाई। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाई, जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जियउ मदत तरुमाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाही, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाई, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही।
ऐसे उद्धव जी से भेंट होने पर कुछ पद
आए हुए हैं लेकिन उसको अभी व्यक्त कर रहे हैं। जब उद्धव जी समझाते हैं गोपी जनों को कि आप मथुरा चलिए, वहीं पर कृष्ण के साथ आपका संग होगा, साथ रहेंगे, या कृष्ण को छोड़ करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, ये करो करो, तो वे कहती हैं,
हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल उपासी, हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी।
हम नंद गांव की रहने वाली हैं, नंद घोष, नाम है गोपाल, जात और कुल गोप है, और गोप और गोपाल की उपासिका गौए और कृष्ण की।
गिरिवर धारी गोधन चारी, गिरिवर धारी गोधन चारी, वृंदावन अभिलाषी, राजानंद जसोदारानी, राजानंद रानी, जलधि नदी जमुनासी, हम तो नंद घोष की वासी।
गिरवर धारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, गिरिवर धारी गोधन चारी, इसका अर्थ है कि गिरिवर धारण करने वाले हमारे हैं, गोधन चराने वाले हमारे हैं, हम वृंदावन के अभिलाषी हैं, हमारे राजा हैं नंद महाराज, रानी हैं जसोदा जी, और हमारे लिए जमुना ही जलधि है, द्वारका नहीं, मतलब द्वारका में समुद्र है तो रहे खारा समुद्र, हमको उसकी जरूरत नहीं, हमारी जमुना ही हमारे लिए जलधि।
प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहलो, अष्ट महासिद्धि दासी, हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी।
उद्धव जी ने जब कहा कि कृष्ण को छोड़ दो तब तुम सुखी हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण कृष्ण है, इसमें तो संदेह नहीं है, तो कृष्ण को विसार करके सुखी हो जाओ, इसका उत्तर देते हुए गोपी जन कहती है,
हमारे हरि हरि लकी लकरी, हमारे हरि हारी लकी लकरी, मन बच कर्म नंद नंदन कुसुम दृढ़ पकरी, हमारे हरि हारी लकी लकरी, हमारे हरि हारी लकी लकरी,
हमारे हरि कृष्ण हारिल की लकड़ी है, हारिल एक पक्षी होता है और वह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, तो हमारे हरि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी, हम कहीं भी रहे, कितना भी दुख में रहे, कुछ भी रहे, उनको नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो जाए, वज्रपात पड़े, कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती है,
हारिल जैसे उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है वो पक्षी, उसी तरह हम नहीं छोड़ सकते हारिल की लकड़ी को।
हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन बच कर्म नंद नंदन सो उदया दृढ़ पकड़ी।
मन से वचन से और कर्म से हमने नंद नंदन को पकड़ा है, कभी नहीं छोड़ सकती। हमारे लिए हारिल की लकड़ी जैसे है।
जागत सोवत सपने सौ सुख, जागत सोवत सपने सौ सुख, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत सपने सौ सुख, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत ही जोग लगत सोयली, जो करुई ककरी। सुतौ व्याधि हमको ले आए, सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मन वच मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी तकरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी, या तो सूरत नहीं ले सौंप, जिनके मन चकरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी।
हमारे लिए हमारे प्रियतम श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन कर्म और वचन से नंदनंदन को हृदय में दृढ़ करके पकड़ा है। जागते सोते और सपने में रात हो या दिवस, सब समय कृष्ण कृष्ण ही हम जपा करती हैं, बका करती हैं। और हे उद्धव, तुम्हारे यह योग की बात हमें ऐसी कड़ी लग रही है जैसे करुई ककड़ी। ये हमारे लिए तुम व्याधि लाए हो, योग का संदेश नहीं लाए हो। हमने ना ऐसा कभी देखा है ना सुना है। यह तो योग का संदेश उन्हें ले जाकर के दो
जिनका मन अभी चक्कर में है अर्थात चंचल है, जिनका मन अभी कृष्ण में नहीं लगा है, उन्हें ले जाकर के योग को सौंपो, हम इसे कभी ग्रहण नहीं कर सकते। गोपियों के नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। गोपियां कहती हैं भगवान से, हे प्रियतम, हमारे नेत्रों ने क्या अपराध किया है कि आप इन्हें इतना दुख दे रहे हैं। सूरदास जी गा रहे हैं, कहा इन नयन को अपराध, 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 रसना रटते सुनत जस श्रवणनी, रसनारटते सुनत जस श्रवणनी, इतना अगम अगाध, कहा इन नयन को अपराध, कहा इन नयन को अपराध, कहा इन। हे प्रियतम, हमारी रसना आपके गुणों को रटती है, इसको तो तृप्ति हो जाती है, तथा हमारे श्रवण भी आपके गुणों को सुनते हैं, इन्हें भी तृप्ति होती है, परंतु नेत्र आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं, अतः ये छटपटा रहे हैं। भोजन कहे भूख क्यों भाजती, बिनु खाए कह स्वाद, एक तक रहता छुटत नहीं कब हूँ, हरि देखने की साध, कहा इन नयन को अपराध, कहा इन नयन को अपराध, कहा इन नयन को अपराध, ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, कहाँ कहाँ अब कीजे, कहाँ कहाँ अब कीजे, एक बेर ब्रजान कृपा करी, एक बेर ब्रजान कृपा करी, सूर सुदर्शन दीजे, सूर सुदर्शन दीजे, कहा नयन को अपराध। कहाइन नैनन कोय अपराध 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 जब ते बिछुर कुंज बिहारी जब ते बिछुर कुंज बिहारी जब ते बिछुर कुंज बिहारी नींदन पर घट नहीं रजनी नींदन पर घट नहीं रजनी विथा विरह जुर भारू विथा विरह जुर भारू जब ते बिछुरे कुंज बिहारी जब से कुंज बिहारी बिछुर गए मथुरा चले गए तब से हे सखी नींद नहीं पड़ रही है आंखों में नींद नहीं आ रही है और यह रात कल्प के समान लंबी हो गई है यह घट नहीं रही है और विरह व्यथा का ज्वर बहुत बड़ा हो गया ताप बढ़ गया
सरदरन नलिनी दल शीतल सरदरन नलिनी दल शीतल जगमग रही उजियारी रवि किरणन ते लागति ताती इही शीतल शशि जारी जब ते बिछुर कुंज बिहारी जब ते बिछुर कुंज बिहारी जब से कुंज बिहारी का वियोग हुआ जब से वे दूर हो गए अरे सखी यह शरद की रात्रि जिसमें कमल खिले हैं नलिनियां खिली हैं और प्रियतम जब हमारे साथ रहते थे उस समय कितनी शीतल लगती थी वह जगमग रात्रि चंद्रमा के कारण लेकिन उसी चंद्रमा की किरणें आज सूर्य की किरणों से भी अधिक दाहक लग रही जब ते बिछुर कुंज बिहारी सरदरन नलिनी दल शीतल जगमग रही उजियारी रवि किरणन ते लागति ताती इह शीतल शशि जारी जब ते बिछुरे कुंज बिहारी श्रवणनी शब्द सुहाइन सखिरी, श्रवणनी शब्द सुहाइन सखिरी, तिक चतक द्रुम डारी, उरते सखी दूर कर हारही, कंकन धरही उतारी। अरे सखी, वृक्षों की शाखा पर बैठे हुए कोयल और चातक के शब्द सुहा नहीं रहे। श्रवणनी शब्द सुहाई न सखीरी, पिकचा तक द्रुमडारी, उड़ते सखी दूरी कर हारे। हमारे हृदय से हार को उतार कर रख दो और हमारे कंकड़ को हमारे हाथ से उतार कर रख दो। सूर श्याम बिन दुख लागत है, कुसुम सेज करी न्यारी। कृष्ण के बिना पुष्प सेज हमारे लिए अत्यंत दुखद लग रही है, अतः पुष्प को हटाओ सज्जा पर से। सूर श्याम बिन दुख लागत है, सूर श्याम बिन दुख लागत है, कुसुम सेज करि न्यारी। बिलखि बदन वृषभानु नंदिनी, बिलख बदन वृषभानु नंदिनी, करी बहु जतन जुहारी, जब ते बिछुरे कुंज बिहारी, जब ते बिछुरे कुंज बिहारी, जब ते बिछुरे कुंज बिहारी। श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल दुखिता गोपियां कहती हैं कि अरे कोई भी किसी के प्रेम के बंधन में मत पड़ना, प्रीति में बहुत दुख है। मति को प्रीति के फंद परे, मति को प्रीति के फंद परे, सागर स्वाति देखि मन माने, सागर स्वाति देखि मन माने, पंखी प्राण हरे। मति को प्रीति के फंद परे, देखी पतंग कहा क्रम कीनो, जीव को त्याग करे, अपने मरिबे ते न डरत है, पावक पैठी जरे। मति को प्रीति के फंद परे, भौर स्नेही तो ही बताऊं, केतक प्रेम भरे। सारंग सुनत नाद रस मोयो, मरी रे ते न डरे। मति को प्रीति के फंद परे, जैसे चकोर चंद को चाहत, जैसे चकोर चंद को चाहत, जल बिनु मीन मरे। सूरदास प्रभु सो ऐसो करी, सूरदास प्रभु सो ऐसे करी मिलाए तो काज सरे मती को प्रीति के फंद परे मती को प्रीति के फंद परे मती को प्रीति के फंद परे। श्री कृष्ण विरह से दग्ध कोई गोपी चातक की विकलता को देखकर संतोष धारण करती है, कहती है अरे सखी यह चातक अपने प्रियतम मेह के वियोग में कब से रट रहा है, इसका प्रेम धैर्य देखकर मुझे कुछ कुछ धैर्य हो रहा है। वह सखी कहती है यह चातक मुझे जिला रहा है। सखी चातक मोही जियावत सखी चातक मोही जियावत जैसे ही रैन रटती हाँ पिए पिए वैसे ही वह पुनि गावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत जैसे ही रैन रटती हाँ पिए पिए वैसे ही वह पुनि गावत सखीरी चातक मोही जियावत अति ही सुकंठ अति ही सुकंठ दाह प्रीतम के तारु जीवन लावत अति ही सुकंठ दाह प्रीतम के तारु जीवन लावत आपन पियत सुधा रसयमृत आपन पियत सुधा रसयमृत बोली बिरहिनी प्यावत बोली बिरहिनी प्यावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत यह पंछी जो सहाय न हो तो यह पंछी जो सहाय न हो तो प्राण महादुख पावत जीवन सुफल सूरताही को जीवन सुफल सूरताही को काज परायावत जीवन सुफल सूरताही को काज पराये आवत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत सखीरी चातक मोही जियावत।
चातक जिसे पपीहा कहते हैं उसको आशीर्वाद देती हुई गोपी कहती है
बहुत दिन जीवो सपिहा प्यार बहुत दिन जियो, पपिया प्यार बहुत दिन जीवो, हो पपिया प्यार बहुत दिन जीवो, बासर रैन नाम ला दौलत, बासर रैन नाम ला दौलत, भय बिराजुर कारो बहुत दिन जीवे पपिया प्यारो। तुम रात दिन अपने प्रियतम का नाम बोलते रहते हो और विरह ज्वर से जल कर काला हो गए हो। बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, बहुत दिन जीवो, आप दुखित पर दुखित जानिजिए, आप दुखित पर दुखित जानिजिए, चातक नाम तुम्हारे देखो सकल विचार सखीजिए, देखो सकल विचार सखीजिए, बिछुरन को दुख न्यारो बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, जाहि लगे सोई पे जाने, जाहि लगे सोई पे जाने, प्रेम बानयन यारो, जाहि लगे सोई पे जाने, प्रेम बानयन यारो, सूरदास प्रभु स्वाति बुंद लगी, तजयो सिंधु करिखारो, सूरदास प्रभु स्वाति बुंद लगी, तजो सिंधु करिखार, बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, बासर रैन नाम ला बोलत, बासर रैन नाम ला बोलत, भय बिरह जुरकारो, भय बिरह जुरकारो, बहुत दिन जीवो पपिया प्यारो, जाहि लगे सोई ते जाने, प्रेम बान अनियारो, सूरदास